ओम शांति। इस विषय की प्रेरणा बाप दादा द्वारा शांति स्तंभ पर खड़े होकर के मिली, और ये टॉपिक फिर जब हमने भाई जी के सामने, दीदी जी के सामने और अपनी कोर टीम के सामने रखा, तो सभी ने सहर्ष स्वीकार किया कि इस विषय पर हम सबको पुरुषार्थ करने की बहुत बहुत आवश्यकता है। अक्सर करके बाबा मुरलियों में कहते हैं, याद का सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, आसान भी है। कई बार कहते हैं कि बहुत आसान है और कई बार डिफिकल्ट भी है। ज्ञानी हम सभी बन जाते हैं, ज्ञान भरपूर है पर याद खिसक जाती है। तो इस विषय को हम और गहराई से समझेंगे हमारी दीदी जी द्वारा, कि याद की यात्रा में हम सभी चल तो रहे हैं पर उस चलने के साथ साथ उड़ें कैसे, फ्लाइंग स्टेज कैसे हो। हम में से कई भाई बहनें अपनी अपनी गति से चल रहे हैं, हम सब कैसे एक गति समान जल्दी से जल्दी इस यात्रा की मंजिल तक पहुंच जाएं, उसकी क्या तैयारी होनी चाहिए, क्या उसके बारे में हम करें कि बीच में जो हमारे सामने बाधाएं आती हैं, साइट सीन्स आते हैं, उनमें हमारी बुद्धि ना रुके और ये यात्रा निर्विघ्न रूप से जल्द पूरी हो। तो मैं दीदी जी से आग्रह करूंगा कि इस विषय पर अपना चिंतन हमारे सामने रखें।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये जो अपना सब्जेक्ट चलेगा एक अभ्यास का, अभी आगामी आने वाले वर्ष में याद की यात्रा, ये अपने आप में बहुत स्पेशल एक प्रोजेक्ट होने वाला है, क्योंकि अपना ईश्वरीय विश्वविद्यालय इसका मुख्य सब्जेक्ट ही है राजयोग। जैसे कोई लॉ कॉलेज होता है, कोई मेडिकल कॉलेज होता है, अपना है मेडिटेशन का कॉलेज। राजयोग की विद्या यहाँ पर पढ़ाई जाती है। इस राजयोग का फॉर्मूला बाबा ने मुरलियों में स्पष्ट किया हुआ है। इसके लिए क्या प्रिकॉशंस ली जाएं, वो बाबा ने मुरलियों में स्पष्ट किया हुआ है। साथ ही इससे क्या उपलब्धि मिलती है और साइमल्टेनियसली कैसे हमको जज करना है मेरी याद की यात्रा किस क्वालिटी की चल रही है, क्या साइंस आ जाएंगे, वो भी बाबा ने मुरलियों में स्पष्ट किया हुआ है। बाबा हमारा स्पेशल राजयोगा टीचर है। भले हम कहते हैं हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में चार सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, कौन कौन से, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। चार सब्जेक्ट की पढ़ाई जरूर है पर सारा राजयोगा के टाइटल के अंदर ही आता है। योग के लिए ही ज्ञान है, योग से ही धारणाएं प्रकट होती हैं और राजयोग सिखाने की ही सेवा करते हैं। तो हमारा जो ये ईश्वरीय कॉलेज है, ये राजयोगा कॉलेज है। भारत में बहुत सारे योगा कॉलेज हैं, वो फिजिकल योगा सिखाते हैं। हमारे इस योग में जो जो अब तक हुआ पिछले संगम युग पर, उसकी कॉपी भक्तों ने भक्ति मार्ग में टुकड़े टुकड़े रूप में किए। कहीं हमारी एकाग्रता के नाम पर हठ योगा, उन्होंने तराटक योगा बना दिया। कहीं हमारे धारणाएं जो आई उसके लिए व्रत जप तप उपवास आदि नीति नियम वो क्रिएट कर दिए। पूरा जो हठ योगा सब्जेक्ट है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग जिसको बोलते हैं, तो वो सारा हमारे राजयोग का बाइफ्रिकेशन ही है। और अंत में जहाँ ये पहुँचता है उसमें वो लोग बोलते हैं दसवां द्वार खुल गया, अनहद नाद सुनाई देता है, सहस्र दल कमल चक्र खुल जाता है, अमृत बूंद टपकती है, ये एक्सपीरियंस बोलते हैं इस तरह से। ये हमारे राजयोग की शुरुआती के अनुभव हठ योग में वर्णन किए जाते हैं। हमारी जो सोल कॉन्शियसनेस स्टेज है जिसमें हम अशरीरी हो जाते हैं, उसको उन्होंने लिखा है सहस्त्र दल कमल चक्र खुल गया, अशरीरी डिटैच्ड फ्रॉम द बॉडी। जैसे ही हम देह से न्यारे आत्म स्थिति में स्थित होते हैं तो ऐसे लगता है अंदर सहस्त्रों आंसर्स हमें मिलने लग जाते हैं, सॉल्यूशंस मिलने लग जाते हैं, एक हल्कापन का एहसास होता है। बहुत सुंदर उन्होंने शब्द यूज किया है दसवां द्वार खुल जाता है। वो शरीर के अंदर 10 दरवाजे अपने हिसाब से बना देते हैं, वो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन वो यहाँ वाली अनुभूति है। इधर वो दसवां द्वार बोलते हैं भ्रकुटी को, तीसरा नेत्र भी उसी को बोलते हैं, थर्ड आई ऑफ विजडम ओपन हो जाती है। वो टोटली सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज और आत्मा में समाये हुए 7 गुणों का अनुभव है, जिसमें पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद ज्ञान शक्ति, ये 7 गुणों के अनुभव में जो सर्वोपरि होता है परमानंद का अनुभव, सुपर सेंशियस जॉय अतिंद्रिय सुख, जिसमें जिगर से अंदर रोम रोम से एक आवाज निकलती है, पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा, ऐसे अंदर से जो आवाज निकलती है उसको उन्होंने लिखा है अमृत की बूंद टपकती है। यानी इतना एहसास सुखदाई होता है कि अब उस आनंद को कोई छोड़ने नहीं चाहता है। तो हमारे यहाँ जो राजयोग सीखने के लिए भाई बहने आते हैं, 90 वर्ष से आते रहे, एक बार जो ये आनंद रस चख लिया सोल कॉन्शियस होकर के आत्मा के अंदर समाया हुआ परमानंद महसूस कर लिया, अब जमाना विरोध करे तो करे। कितना अपोजिशन हुआ दुनिया में, लेकिन ये राजयोग का जो टेस्ट जिन्होंने कर लिया वो छोड़ने नहीं चाहते है। विरोध का दर्द उनको छोटा लगता है और ये राजयोग का जो आनंद है वो बहुत ऊंचा लगता है, पाना था सो पा लिया तभी कहते हैं। तो इसकी हमारे राजयोग की बाइफ्रिकेशन बाद में भक्ति मार्ग में चलती आई है, चाहे वो हमारी राजयोग के लिए पवित्रता की धारणा हो, उसके लिए कन्या पूजन पवित्र का पूजन हो रहा है, सन्यासियों का मान शान हो रहा है, उनके चरण पूजे जा रहे हैं, हमारी मूर्तियां पूजी जा रही हैं, क्योंकि हमने संगम युग पर राजयोग के लिए पवित्रता ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया था। हमारे अन्न शुद्धि के व्रत को लेकर के भक्त लोग भी अनेक प्रकार की अन्न शुद्धियां, भोग लगाना, लंगर करना, फिर व्रत रखना, अनुष्ठान करना, अन्न से संबंधित जो संगम युग पर बाबा ने राजयोग के लिए हमारे से करवाया, उसके आगे टुकड़ा टुकड़ा हजारों रूप में होके वो भक्ति मार्ग में चला। तो संगम युग पर फिर से हमको ये बहुत बड़ा टोटल सब्जेक्ट मिलता है, ये तो पीएचडी सब्जेक्ट है, याद की यात्रा। याद एक यात्रा है। बाबा कहते योग योग मत बोलो, योग शब्द बोलते हैं तो हठ योगा से रिलेट हो जाता है, तो फिर उसका कुछ न कुछ इम्पैक्ट आने लगेगा मन पर। योग से लगेगा कोई जटिल साधनाएं हैं, कोई वैराग और त्याग का मार्ग है। हम भले राज योग बोलते हैं तो भी उसमें योगा इम्प्रेशन भारी आ जाता है। तो बाबा ने कहा याद बोलो, याद में रिलेशन है, याद के अंदर प्यार है, याद बोलो तो अपनापन है, रिश्तेदारी है ना, याद बोलो तो एक ह्यूमन ग्राउंड है जहां प्रैक्टिकल ग्राउंड पर आकर के बात करते हैं। सिर्फ योग बोलो तो कुछ मशीनी सी स्टीरियोटाइप सी चीज लगती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं याद की यात्रा। एक यात्रा है जिसमें हम ट्रेवल कर रहे हैं, गैलप कर रहे हैं, पतित से पावन बन रहे हैं, जिसके प्रोसेस में हम तीन लोक तक जा रहे हैं। मन की यात्रा, देह को भूल आत्मा समझ, फिर सूक्ष्म वतन की यात्रा करते, फिर परम धाम तक की यात्रा करते, फिर अपने पांच स्वरूपों में आओ तो अपने पूज्य स्वरूप को भी याद करते हैं, तो अपने आदि स्वरूप को भी याद करते हैं। तो ये यात्रा करते हैं हम। बाबा कई बार उदाहरण देते हैं, उस यात्रा में तो आपको एरोप्लेन में जाना पड़े और अगर उसका पेट्रोल खत्म हो जाए, चांद तारे कहाँ तक भी जाके पूरा जा नहीं पाएंगे, उसमें पेट्रोल डीजल सब चाहिए, लेकिन इस यात्रा को आप बैठे बैठे कर सकते हैं, मन से पहुंच जाते हैं। तो याद की यात्रा के बाबा ने कुछ बेसिक फॉर्मूलाज दिए हैं जिस पर इस प्रोजेक्ट में हम काम करेंगे जरूर। पहला बेसिक फॉर्मूला जो बाबा ने इसके लिए दिया है, बिल्कुल सेट फिक्स्ड, बच्चे देह सहित देह के सब धर्मों को भूल, अपने को आत्मा समझ, मुझ एक बाप को याद कर। यह बेसिक फॉर्मूला, देह सहित देह के सब धर्मों को भूल, पहले भूल देह, देह सहित देह के सब धर्म, धर्म में संबंध भी आ जाते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझ एक बाप को याद कर। एक को कई दादियां हंसी में सुनाती होती हैं कि राजयोग क्या है, अकेले होकर अकेले में अकेले बाप को याद करना, ये राजयोग है। अकेले माना देह के बिना अकेली आत्मा एकांत में केवल एक को याद करे जिसमें और किसी की याद न हो। अब जब हम याद की यात्रा का अभ्यास करते हैं, इस फॉर्मूला को साथ में लगाना अनिवार्य है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट को क्वालिफाई करना है, उसमें मार्क्स लेने हैं, तो उस सब्जेक्ट पर ए टू जेड काम करने की जरूरत पड़ती है। बहुत बार बाबा के बच्चे आके बैठते हैं योग के लिए, तो थोड़ा बहुत सोचेंगे मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शांत हूँ, आंखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मुंह से बोलने वाली, बस बाबा मैं आ रही हूँ आपके पास, बाबा आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो, बस। तो कहते थोड़ी देर में ना दीदी हमारी कमेंट्री पूरी हो जाती है, 15 मिनट बाद 10 मिनट बाद हमें समझ में नहीं आता है कि अब मटेरियल खत्म हो जाता है। मैं नई नई जब ज्ञान में चली, एक हंसी की बात सुनाती हूँ। कई भोले ब्राह्मण ऐसा करते हैं, तो बिल्कुल ही नई थी, मेरा शायद 7 डेज कोर्स ही चल रहा था। उसी सेंटर पर एक बूढ़ी माता आती थी, मुझे कहती है, अनीता इधर आ, तेरे को योग सुनाऊं। कहा अच्छा, इनका कोई होता होगा, योग सुनाऊं। तो उसने अपना जो चुन्नी दुपट्टा लिया हुआ था सिर पे लिया, ऐसे किया भक्ति मार्ग की तरह जैसे करते हैं, ऐसे क्रॉस लेग्स बैठी, ऐसे करके और कमेंट्री शुरू हो गई सारी। मैं एक आत्मा हूँ, ये और सुना करके 5 मिनट, मुझे कहती ठीक सुनाया मैंने। तो बाबा तो कई बार कहते हैं भोले बच्चे बाबा 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 करते रहे तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। वो बोल तो रटा रटाया रही थी, किसी से लिखवाया, उसको रट्टा लगाया, फिर रिपीट किया, पर उसके फेस पर एक चमक थी, उसके पास एक भावना थी, उसने मुझे अट्रैक्ट किया। भले उसको फॉर्मूला नहीं आता था, पर भावना और प्यार इस फॉर्मूला में प्लस होती है। ये अकेला कोई रटने जपने का सब्जेक्ट नहीं है। राजयोग में कुछ एक चीजें प्रोहिबिटेड हैं। पूछा ना क्या क्या मना है, कुछ एक चीजें प्रोहिबिटेड है, मना है, मांगना मना है, प्रार्थना करना मना है, शिकवे शिकायतें करना मना है, भक्ति मार्ग मीन्स मांगना। लोग जाते हैं भगवान के पास या घर में भी बात करते हैं, हे भगवान ये दे देना वो दे देना, वो पहले अपना रटा रटाया कुछ पढ़ लेंगे, ओम जय जगदीश हरे या हनुमान चालीसा वगैरह, फिर अपनी एक सेट लिस्ट सुना देंगे, भगवान जी ये वाला काम जरा जल्दी कर देना। अगर वो काम कर दिया तो भगवान जी ओके है, नहीं किया तो हम भगवान जी बदल लेंगे। उनके तो भगवान बदलते रहते हैं, क्योंकि जो काम कर देवे सो भगवान अच्छे वाला, जो ना करे वो कमजोर वाला, या फिर उनकी लिस्ट से वो कट जाता है। तो बहुत सारे स्थान प्रसिद्ध होते हैं, वहां जाओ तो बच्चा मिलता है, वहां जाओ तो बीमारी ठीक होती है, वहां जाओ तो धन मिलता है। तो वो भक्ति मार्ग है मांगना। बाबा कहते हैं मांगने से मरना भला, मैं मांगने से कुछ देता नहीं हूँ। राजयोग में है मांगो मत योग्य बनो, विधि पूर्वक मुझे याद करो। विधि से सिद्धि है या रिद्धि से सिद्धि नहीं है, रिद्धियां अलग चीज होती है, वो अभी हम डिटेल नहीं करेंगे, लेकिन यह विधि है। जो विधि बताई ना, आत्मा समझ देह भूल, मुझ एक से सर्व संबंध जोड़, फिर मुझसे रिश्ते के रूप में बात कर। तो राजयोग में हम मांगते नहीं लेकिन योग्य बनते हैं। जैसे बर्फीले इलाके में चले जाओ तो कहना नहीं पड़ता है बर्फ तू मुझे ठंडक दे, अपने आप मिलती है। सूर्य की रोशनी में जाओ, कहना नहीं पड़ता है सन लाइट दे, हीट दे, अपने आप मिलती है। यहाँ काले पर्दे डाल करके, दरवाजे बंद करके, सूर्य की फोटो रख के बोलने लग जाओ है सूर्य लाइट दे हीट दे, सारी उम्र लगे रहो, नहीं मिलने वाला। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में मांगना इस प्रकार से होता है, मैं मांगने से नहीं देता हूँ, विधि से देता हूँ। तो हम सबने समझा हुआ, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ना है तो कनेक्ट होता है तो लाइट आती है, नहीं होता है तो एनर्जी नहीं आती है। यहाँ फिर बाबा ने उसकी कनेक्शन की विधि बताई हुई। तो विधि से सिद्धि है राजयोग में, प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना है रिक्वेस्ट, वन वे कन्वर्सेशन, उसको प्रेयर बोलते हैं। एक तरफ से हम बोले जाते हैं ये कर दो वो कर दो, आप इतने अच्छे मैं इतना खराब, वन वे कम्युनिकेशन। राजयोग है टू वे कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन हम भी कुछ कहते हैं, फिर हम चुप हो जाते हैं, वो भी कुछ कहता है, हम सुनते हैं। तो कन्वर्सेशन है और दिल की दिल से मुलाकात है, एग्जिट वाली है, फर्जी नहीं है। एग्जैक्टली हम आत्मा हो परमात्मा से मिलन मनाते हैं। तो इसलिए राजयोग ना तो मांगना है, ना राजयोग के अंदर कोई प्रेयर है, ना राजयोग के अंदर कोई हठ क्रियाएं हैं। इसमें बाबा कहते सहज। सहज किस बात में? अपने फिजिकल पोस्चर, या फिर सहज है कर्मयोग के रूप में। ये कर्मयोग है, कर्म नहीं छोड़ना, संसार नहीं छोड़ना, फिर भी योगी होकर रहना है। न कर्म छोड़, न संबंध छोड़। बाबा जिसको कहते हैं परिवार से भी, लौकिक से भी तोड़ निभाना है। फिर बाबा कहते हैं लौकिक को अलौकिक करके जियो। एक तरफ बाबा कहेगा तोड़ निभाओ, दूसरा हमारा राजयोग है जीते जी मर जाओ। जिसको सिंपल शब्दों में अगर बोला जाए तो हम किसी के नहीं, कोई हमारा नहीं, परंतु हम सबके हैं, सब हमारे हैं। मोह मुक्त संबंध, एक नेचुरल सा वैराग। तो राजयोगा है वंडरफुल बैलेंस। इंटरनल हम जुड़े हैं बाबा से, भगवान से, एक्सटर्नली कटते हैं संसार से। संसार में हम हैं पर संसार हमारे में नहीं। जो प्रवृत्ति वालों को बाबा ने सिखाया हुआ है कमल पुष्प समान रहो। तो राजयोगा इज द अदर नेम ऑफ वंडरफुल बैलेंस। लौकिक अलौकिक का बैलेंस है, विवेक और भावना का बैलेंस है, स्थूल और सूक्ष्म का बैलेंस है, त्याग और प्राप्तियों का बैलेंस है, वंडरफुल बैलेंस है। छोड़ते भी कुछ नहीं, पकड़ते भी कुछ नहीं, सब कुछ अपने आप छूट जाता है, निभाते सबसे है। तो ऐसा राजयोग का हमारा वंडरफुल सब्जेक्ट है जो बाबा ने हमें दिया हुआ है। तो ये राजयोग कुछ परहेजों के साथ चलता है। जैसे राजयोगा चार सब्जेक्ट से चलता है, ऐसे ही राजयोगा चार पिलर से चलता है। अगर वो चार पिलर्स नहीं लगाएंगे तो राजयोगा की सीट पर सेट नहीं हो सकेंगे, डगमग हो जाएंगे। पिलर्स भी बहुत स्ट्रांगली लगाने होंगे। कौन कौन से चार पिलर आते हैं सबको? 7 दिन के कोर्स की बात है। ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, सत्संग और दैवी गुण। ये चार पिलर लगाए बिना हमारा राजयोग नहीं चलता है। ब्रह्मचर्य ऐसा चाहिए, बाबा ने स्पष्ट किया हुआ है। पहले तो लोग बोलते थे ब्रह्मा कुमारियों के यहाँ नहीं जाना। क्यों नहीं जाना बोलो? भाई बहन बना देंगे। यहाँ तो भाई बहन से भी आगे बनाते हैं, उतना भी नहीं। भाई बहन तो बाबा कहते वो उसमें भी दृष्टि खराब हो सकती है। बाबा एक कदम और आगे बोलते हैं, क्या? भाई भाई की दृष्टि रखो, भाई बहन की भी नहीं। भाई बहन भी अगर बनाए, कहीं पर कोई बना सके, तो ये भी कोई छोटी बात नहीं है। साधु सन्यासी पवित्रता को धारण करने के लिए घर में रहकर पवित्र नहीं बन सके, घर छोड़ जंगल चले जाते हैं। और जो कोई कार्य, जो एक राजयोगा की विधि, अगर किसी को घर गृहस्थ में रहते यंग कपल्स को स्वाभाविक ब्रह्मचर्य दे देवे, बहन भाई की भी फीलिंग दे देवे, तो ये कितनी बड़ी ऊर्जा है, कितनी बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि लोगों ने लस्ट को, विषय विकारों को एंटरटेनमेंट बना लिया है, आनंद का साधन बना दिया है कि इससे हमको आनंद मिलता है। लेकिन राजयोग हमारा इतना ऊंचा आनंद देता है कि बिन कहे हमारे युगल घरों में ब्रह्मचर्य को धारण कर लेते हैं, बहन भाई की दृष्टि में आ जाते हैं, और उससे भी ऊपर बाबा हमें भाई भाई की दृष्टि और वृत्ति में लेकर के जाता है। उसके बिना राजयोग की एकाग्रता असंभव है। जैसे कहते हैं, एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, या तो जीवन काम हवाले है, ऐसे ही या तो जीवन राम हवाले है। काम विकार है तो राम की याद में एकाग्र नहीं हो सकते, और अगर उसकी याद में ठीक एकाग्र होने लग गए तो काम विकार अपने आप चला ही जाता है। तो ब्रह्मचर्य का हमारा पिल्लर है, हमारा शुद्ध अन्न का पिल्लर है। शुद्ध अन्न की भी परिभाषा है, ब्रह्मचारी राजयोगी के हाथ का पका हुआ योग युक्त शाकाहारी भोजन। भोग लगाया गया भगवान को, और फिर प्रभु की याद में रह करके प्रसाद रूप खाया गया भोजन ही वास्तव में शुद्ध भोजन होता है। इसमें से एक भी स्टेप मिस है तो शुद्ध भोजन पूरा नहीं है। कई बार हम रेडीमेड ले लेते हैं जिसमें प्याज लहसुन नहीं है, पर ब्रह्मचारी के हाथ का नहीं है, योगी के हाथ का नहीं है, भोग लगा हुआ नहीं है और स्वाद वश खाया जा रहा है, वो भी ब्रह्मा भोजन नहीं है। प्रसाद रूप खाया जाए, योगी जीने के लिए खाता है, खाने के लिए नहीं जीता है। और तीसरा पिलर है हमारा सत्संग। हम सत्य के संगी हैं, उसके साथी हैं, तो रोज परम सत्य के महावाक्यों का संग करते हैं, उसका संग करने वालों का संग करते हैं। ये हमारा राजयोग का अनिवार्य पिलर है। इसलिए आप सबने महसूस किया होगा, लगभग हमारे सभी महारथी आजकल क्लासेस में ये बात जरूर कोट करते हैं कि घर में बैठकर ऑनलाइन मुरली नहीं सुनो भाई, सेंटर पर जाके सुनो। हमारी शिवानी दीदी तो बार बार कहती है, जो घर में सुनते हैं ऑनलाइन सुनते हैं, 40 दिन रोज जाके देखो, फिर डिफरेंस बताना। अवस्था में बहुत प्रेशराइज्ड करती है, क्योंकि वास्तव में उसका संग करने वालों का भी संग वाइब्रेशन एनर्जी देता है, हमारे राजयोग को एक पुश देता है और एकाग्रता में सहयोगी बनता है। फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर है, जिस पर कई बार ध्यान थोड़ा कम चले जाता है, वो हमारे दिव्य गुणों की धारणा है। उसको ठीक से हम रिलेट करें कि अगर हम दिव्य गुणों के सब्जेक्ट पर ठीक ध्यान देंगे तो हम अच्छे योगी होंगे। दिव्य गुण ढीले छोड़ दिए, बाकी सब्जेक्ट पर बहुत मेहनत किया, ज्ञान पर मेहनत किया, योग लगाने पर जोर लगाया, सेवाएं बहुत करी, लेकिन दिव्य गुण आजकल चल रहा है, मधुरता, नम्रता, संतुष्टता, त्याग, दया, क्षमा, करुणा, बहुत सारे महत्वपूर्ण दिव्य गुण हैं जो हमारे पुण्य की शक्ति को बढ़ाते हैं। दिव्य गुणों के अगेंस्ट है अवगुण। जितना अवगुण प्रयोग होते हैं व्यवहार में, पाप होता जाता है, कर्म विकर्म बनता जाता है, आत्मा पर जंक लगती जाती है। जैसे बाबा कहते हैं, जंक लगी सुई को मैं चुंबक खींचता नहीं हूं, सुई पर जंक नहीं लगी होनी चाहिए। तो मेरा अनुभव ये कहता है कि दिव्य गुणों पर कोई ठीक मेहनत करे तो सुई से जंक उतरे और वो चुंबक खींचे, ऐसे लगेगा हम बाबा को याद नहीं कर रहे, बाबा हमें याद करता है। तो एक एक दिव्य गुण के सब्जेक्ट पर हम, मैं समझती हूँ ये जो प्रोजेक्ट हम लेंगे इसमें दिव्य गुणों पर भी डेप्थ से बात करेंगे। आजकल जो अव्यक्त इशारा भी चल रहा है नम्रता और मधुरता पर, तो हमारे श्रद्धेय मोहिनी दीदी जी रोज अव्यक्त इशारा एक्सप्लेन करते हैं। अव्यक्ति परिवार के नाम पर चैनल है, क्या वंडरफुल गहराई की बात होती है उसमें, चिट चैट होती है, क्वेश्चन आंसर होते हैं, एक्सप्लेनेशन होती है। आज भी बाबा ने कहा मधुरता का आधार है पवित्रता, और मधुरता से भी पुण्य बनता है। तो ये भी अंदर की डिग्री है हमारी पवित्रता की, जो दिव्य गुणों के रूप में एक्सप्रेस होती है। ये भी हमारा बाबा से प्यार का एक साइन है कि हम दिव्य गुण धारण करते हैं, अवगुणों का त्याग करते हैं। हमारा परिवर्तन की और थीम है ना, तो अवगुणों का त्याग करना सिर कटाने बराबर होता, दिव्य गुण धारण करना इट्स द ग्रेटेस्ट डोनेशन टू गॉड, भगवान के प्रति सबसे बड़ी हमारी जैसे आहुति है, उनके प्रति गिफ्ट है दिव्य गुणों की, जिसको जरा सा भी ढीला नहीं छोड़ना चाहिए, जो हमारे देवत्व के लिए महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। ये चारों पिलर्स की बात करी, लेकिन मैं मेन अब फॉर्मूला पर फिर से आने चाहती हूँ। पहला जो शुरू का फॉर्मूला हमने बात की, बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को भूल, फिर अपने को आत्मा समझ, फिर मुझ एक बाप को याद कर। एक एक शब्द इसमें काम करने जैसा है। अपने साथ रिलेट करें, क्या हम ऐसा वाला योग करते हैं जिसमें देह भूल जाए, देह सहित देह के सर्व संबंध और दैहिक भावनाएं हम अगर चिंतन करें तो महसूस करेंगे कि देह भान कम से कम 1,00,000 प्रकार का होता है। जैसे ही हम साइलेंट होते हैं, बाबा कहते ना साइलेंस करो, अशरीरी हो जाओ, देह को भूल जाओ, तो भी देह की स्मृतियां वैरायटी प्रकार से यहां रजिस्टर है आत्मा में। कभी प्यास लगेगी, कभी खुजली होगी, कभी टांग दुखेगी, कभी पेट में कुछ गैस बनेगी, कभी कुछ कभी कुछ। हर एक चीज एक आवाज मारती है, हर इंद्रिय आपको वापस खींचेगी अपनी तरफ। आंख को कुछ दिख जाएगा, हमारे खुले आंखों वाला योग है। हमारे कान में कोई फोन की घंटी बज जाएगी, और कुछ नहीं तो अंदर के मन के फाइल्स खुलेंगे। जैसे ही सामने बाबा का फोटो देखा, हाँ मेरे घर में भी बाबा का फोटो है, मेरा बेटा बनवा के लाया था, वैसे बेटा बहुत अच्छा है, मेरे बेटे जैसा बेटा होना चाहिए। देह को भूल, आत्मा समझ। जब आत्मा समझ, तो जैसे देह की पहचान में मैं फीलिंग आती है, कोई आवाज लगाए अनीता, पूछे कौन है अनीता, मैं हूं। सच क्या है, हमारा राजयोग का ज्ञान कहता है सच में तुम अनीता नहीं हो, तुम आत्मा हो। जैसे आवाज लगाए कोई आत्मा, हम जवाब देंगे कौन है आत्मा, मैं हूं। वो मैं वाली फीलिंग जिसको दादियां कहती थी दो टुकड़ा हो जाए, देह अलग टुकड़ा, सेकंड पर्सन फील हो। इसको हम नयों को ज्ञान सुनाते हुए बोलते हैं, ये कार है, ये वस्त्र है, ये गुफा है, ये मंदिर है, मैं इसके अंदर ज्योति हूँ, मूर्ति हूँ। पर फीलिंग, ये तो सुनाने के शब्द हैं। फील हो, ये उतर गया, कार है नहीं, अब मैं अकेली ज्योति आत्मा। आत्मा का फिर सारा स्वरूप आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी, उसकी एक एक बात में टिकूं, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। मन बुद्धि संस्कार मुझ में समाए हैं, मेरी फैकल्टीज है, उसमें ठहरूं, उसको फील करूं, जैसे हाथ को फील करते हैं, मेरा हाथ फील करते हैं, ये देह को फील करते, फील हो। आत्मा मन वाली हूँ, बुद्धि वाली हूँ, ये मन बोल रहा है, ये बुद्धि बोल रही है, ये संस्कार बोल रहे हैं, चाबुक मार रहे हैं घोड़े को, इसको मुझे चेंज करना है। मैं बिंदी हूँ, मैं शांत हूँ। सुदेश दीदी हमेशा बोलेंगे ओम शांति के साथ, ओम सुख, ओम आनंद, वो टेस्ट से बोल रहे हैं, वो उस बिंदी में स्थित है, वो सुदेश स्वरूप में स्थित नहीं है, आत्मा स्वरूप में स्थित है, तो स्वाभाविक उनके मुख से वो फीलिंग्स निकलती हैं। ओम शांति भी हो तो ओम शक्ति भी हो तो ओम प्रेम भी हो तो ओम आनंद, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं की फीलिंग की गहराई में जब जाएंगे, देह भूल जाएंगे, भूल जाना बहुत बड़ी बात है। अपनी फोटो देख करके कितने खुश होते हैं, शीशा देख के कैसे ऐसे ऐसे करते हैं, भूल जाए पहचान, ये फोटो किसकी है, अच्छा आपकी है, बिंदी हूं मैं तो, न्यारी हूं, देह के बिना वाली हूं। घर, वो लौकिक घरों का वो मेरापन नहीं रहता, जब मेरा घर परम धाम, मैं बिंदी अपने घर में थी, मनमोहिनी दीदी को धुन लग गई थी घर जाना है, तो इतनी होम सिकनेस फील की उन्होंने, इतना होम फील हो, परम धाम शांति की दुनिया, सितारों में मैं सितारा, परम सितारे के पास, देह भूली, दुनिया भूली, घर याद आया, फिर सबको भूल, एक को याद कर। बाबा ने एक मुरली में कहा था, सर्व संबंधों के सार वाली प्लेन याद चाहिए, प्लेन जिसमें न सेवाओं की प्लानिंग हो, जिसमें ना कोई रिक्वेस्ट हो, ना कोई कंप्लेंट हो बाबा से, एक मिलन की फीलिंग हो, अकेली आत्मा हूँ, अकेला परमात्मा है। किसी किसी को क्वेश्चन होता है, ब्रह्मा बाबा को याद करे कि शिव बाबा को करे कि दोनों को इकट्ठा करे, कब अकेला कर। जयंती दीदी ने एक बार बहुत प्यारी बात कही थी कि कभी भी ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा से डाइवोर्स नहीं दो, सामने देखो तो कौन है, ब्रह्मा बाबा है या शिव बाबा है, कौन है सामने, दोनों है। ब्रह्मा बाबा माना ही बाप दादा, तो ये आदत पड़ जाए ब्रह्मा में शिव देखने की, हर देहधारी में आत्मा देखने की, तो ये पहुंच जाता है, जब बैठते हैं तो देह भूल आत्मा समझ, देहधारी भूल परमात्मा को याद कर, भले ब्रह्मा की भ्रिकुटी में देखेंगे प्रोमिनेंट शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा रथ है, कवर है, बात शिव बाबा से होती है, मुलाकात शिव बाबा से होती है, मिलन होता है, सूक्ष्म वतन में उन प्रकाश के नयनों से मिलन होता है, परम धाम नंगे आए नंगे जाना, डायरेक्ट मिलन होता है आत्मा बिंदु परमात्मा बिंदु, उस बीज रूप अवस्था तक हर दिन हमको पहुंचना है याद की यात्रा में। किसी ने अगर कभी उस एकाग्रता को नहीं अनुभव किया तो बहुत बड़ी पूंजी गंवा रहे हैं हम। इसलिए बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इस पर हमने पूरा साल काम करना है, जो इसका ग्रुप बनाया जा रहा है याद की यात्रा पूरा साल। ये तो हमने सारे हेडलाइंस बोले हैं, इसके एक एक हेडिंग पर काम करेंगे, आत्मा समझ पर, देह भूल पर, घर को याद कर, बाप से मुलाकात कर, कैसे मुलाकात होती है, फिर कैसे संबंध की फीलिंग होती है, कैसे उसकी अनुभूतियां होती है, कैसे उन अनुभूतियों को कर्म में यूज करते हैं। पीएचडी सब्जेक्ट है, मैं समझती हूँ सभी को इस पर काम करना ही चाहिए। ये सबका अपना बिल्कुल निजी सब्जेक्ट है। राजयोगा यूनिवर्सिटी के हम सब स्टूडेंट हैं। इसकी और डिटेल में जाएंगे, अभी समय इतना ही है जिस पर हमको बात करनी थी, लेकिन पूरा प्रोजेक्ट बनाया जाएगा विधि पूर्वक, कुछ डेली, कुछ वीकली, कुछ मंथली प्रोग्राम दिए जाएंगे। आपके जोन जोन में भी जा करके कुछ मीटिंग्स की जाएंगी, कुछ मीटिंग्स ऑनलाइन होंगी। वो कैसे सारा प्रोजेक्ट बनेगा आपको जानकारी दे दी जाएगी। प्रोजेक्ट तो कहने की बात है, तो हम सबका अपना सब्जेक्ट है, और इसको क्वालिफाई करके कर्म योगी टू कर्मातीत की स्थिति को हमें लक्ष्य रखना है, इसी साल में हासिल करना ही है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, जितने टॉपिक्स आपने बताए हैं मैं नहीं समझता कि एक साल में पूरा हो पाएगा, और जिस गहराई से हम जाना चाहते हैं मेरे को लगता है इसको और आगे भी बढ़ाना पड़ेगा। परंतु ये ज़रूर हम कहते हैं कि जो यथार्थ परिभाषा आपने बताई उसमें टिक करके ही हम आगे बढ़ेंगे। तो सभी, आप सभी से मिलकर के हम इस प्रोजेक्ट की तैयारी करेंगे। पर उससे पूर्व जो श्रीकांत भाई जी हमारे साथ में बैठे हैं, जब हमने इनसे इस टॉपिक के बारे में कहा तब पहला इन्होंने बोला कि याद का विषय बहुत सुंदर है, और करीब चार बुक्स उन्होंने याद के ऊपर जो मुरलियों से निकाली गई हैं, जो चार बुक्स याद के ऊपर हैं वो मुरलियों से निकाली गई हैं उन्होंने दी। इतना कुछ बाबा ने याद के ऊपर बोला हुआ है, तो हम सबको उस पर काम करने की ज़रूरत है। और मैं भाई साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमें याद की जो गहराई है, जो यथार्थ याद की जो गहराई है, उसमें आप हमें लेकर के जाएं। तो श्रीकांत भाई जी से मैं अनुरोध करूँगा कि आप सबके सामने आप अपना अनुभव रखें।
अनीता दीदी ने जो याद की यथार्थ परिभाषा और उसके साथ साथ अभ्यास को कैसे हम, चाहे वो जिन्होंने हमें बेसिक फार्मूला की बात कहा, परहेज की बात कहा, तो याद एक ऐसा सब्जेक्ट है, याद के सब्जेक्ट के द्वारा ही सागर बाबा को हम अपने गागर में समा सकते हैं, और ये संपूर्ण ज्ञान है, और उसको हम एक डेढ़ घंटे में प्रैक्टिस करते हैं, जो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम अभ्यास करेंगे। याद सिर्फ बात करने का नाम नहीं है, जिस पर हम सिर्फ चर्चा करें, क्लासेस हो, लेकिन याद सब्जेक्ट जो उसकी यथार्थ परिभाषा है, याद करने का नाम है, सोचने का नाम नहीं है। अगर आप इस वर्ष मुरली की जो सीजन में रिवाइज हुआ उसमें जो फर्स्ट मुरली आप पढ़ेंगे, बाबा ने हमें एक होमवर्क दिया था, अभी स्वच्छता स्वरूप नहीं बनना है, अभी क्या बनना है, स्मृति स्वरूप, सोचना नहीं है हमें बनना है। तो जो हम याद की यात्रा का जो सब्जेक्ट ले रहे हैं इसके पीछे यही उद्देश्य कहे या लक्ष्य कहे ना, हम जो भी ज्ञान में आने के बाद बाबा से मुरली में सुनते हैं और बाबा कहते हैं कि आप आते ही मैं तीन काल का ज्ञान देता हूँ, आप क्या थे, अभी क्या हो और क्या बनने वाले हो, और इसकी जो तीन बात बाबा सुनाते हैं, क्या थे, क्या हो और क्या बनने वाले हो, इसमें याद हैं। तो मैं कुछ सुनते सुनते पॉइंट नोट कर रहा था, आपके सामने रखेंगे क्योंकि पूरे वर्ष पुरुषार्थ करना है और कल हम सभी डेढ़ घंटा आपस में मिलेंगे, इस पर और थोड़ा सा चर्चा करेंगे और उसकी प्रैक्टिकल प्लान बनेगा। जैसे मैंने कहा कि इस अभ्यास के दौरान, प्रोजेक्ट के दौरान हम बात तो करेंगे ही लेकिन ज़्यादा अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं और जब से बाबा के बच्चे बने हैं, मुरली सुन रहे हैं, क्लासेस सुन रहे हैं, ज्ञान बिल्कुल भरपूर हैं, कुछ एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने ज्ञान को लिया है अभी उसकी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करना है। जो इतने समय से आप सुन रहे हैं, हम एक तीन मिनट की अभ्यास करेंगे और इस तीन मिनट के अभ्यास में आप अपने आप को देखेंगे, क्योंकि बाबा तो कहते हैं कि जब अंतिम समय आएगा और हम सबको अंतिम समय में सामना करना होगा, पेपर देना होगा, जो भी बाबा के बच्चे हैं, नए हो या पुराने हो, और उस पेपर को देखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, तभी आप पास हो पाएंगे। पर बाबा पेपर में पास होने के लिए एक पेपर दिया है और उसके लिए रिजल्ट भी कहा है, क्वेश्चन और उसकी आंसर, और वो है हलचल में अचल रहना। पेपर आएगा हलचल का और एक सेकेंड में पेपर आएगा, उसमें जो पास हो जाएंगे अचल होकर वही पास हुई तनर बनेंगे। इतनी लंबी बात आपने सुना है, हम तीन मिनट के लिए एक प्रैक्टिस करेंगे जो बाबा हलचल में अचल रहने के लिए एक अभ्यास बताते हैं, और उस अभ्यास का नाम है अंगद समान अचल और अडोल बनो। तो यहाँ पर अंगद समान अचल अडोल में जो मुख्य पहले शब्द है वह है अंगद, और अंगद वही बन पाएगा जो अपने अंग किसको दे देगा, बाबा को दे देगा। तो इस तीन मिनट के अभ्यास में आपको लक्ष्य यह दे रहे हैं, यहाँ जो भी बैठे हैं, तीन मिनट आप ऐसे बैठो, शरीर का कोई भी अंग हिले नहीं, चाहे आंखों से लेकर अपने पाँव की फिंगर टिप्स तक, आप आत्मा राजा बनकर कमांड दो। क्योंकि हम बाबा कई बार कहते हैं मैं ऊपर से देखता हूँ, हलचल में अचल होने के लिए एक हलचल का पेपर आएगा स्थूल, जिनके साथ आप रहते हैं, उसके बाबा ने चार बात कहा है, पेपर आएंगे व्यक्तियों से, पेपर आएंगे साधनों से, पेपर आएंगे वातावरण से, वायुमंडल से, और फिर पेपर आएंगे आपकी अपनी जो स्वभाव संस्कार हैं, पुरानी अंदर भरा हुआ है 2500 वर्ष से, वो सूक्ष्म है, लेकिन तीन पेपर जो स्थूल आपको दिखाई देगा, उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कोविड। ब्राह्मण परिवार भी हिल गया था, लेकिन अभी वो पेपर आकर के एक एग्जाम दिया, हमें दिखाया। तो ये तीन पेपर जो है पहले हलचल वाला है जो दिखाई देगा, तो खुद अपने आप को तैयार करना है। तो उसके लिए पहले हम 3 मिनट अभ्यास करेंगे, और इस अभ्यास की कुछ बात मैंने नोट किया हूं आपके सामने रखेंगे, बाबा ने मुरली में कहा है, और आगे और ही बातें चर्चा होंगी। लेकिन 3 मिनट की प्रैक्टिस में आपको कोई नहीं देख रहा है, आप अपने आप खुद को देखते हो और आपको देखने वाला बाबा, और तीसरा कोई भी देखेगा कुछ अलग देखेगा, वो अपने दृष्टिकोण से आपको देखेगा। लेकिन इस अभ्यास में आप स्थिर बैठेंगे, शरीर का कोई भी अंग नहीं हिलेगा, बुद्धि में आप एक बिंदु को देखेंगे, और बिंदु कौन है? बाबा। हम 1 to 8 तक काउंट करेंगे, और जैसे 8 होगा तो आप सब स्थिर बैठ जाएंगे। कोई जा रहे हैं आ रहे हैं, आपकी अटेंशन वहां जाना ही नहीं चाहिए, ये आपकी परीक्षा है 3 मिनट में, और इसमें आप अपने आप को मार्क्स देंगे। ये 3 मिनट की पेपर आपके सामने है, कहा गया कि आपको स्थिर बैठना है, शरीर को नहीं हिलाना है, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो 3 मिनट अभ्यास स्वयं को स्वयं के मालिक बनाकर आपने किया, तो 30 सेकंड में चेक करें, अगर इस पेपर आपके सामने प्रैक्टिकल रूप में अभी अभी जो कहा गया आपने किया इसको, तो आप उसमें पास हुए या फेल हुए, क्योंकि यहां 2 शब्द आता है, पास या तो फेल। ये सर्टिफिकेट आपको दूसरा कोई नहीं देगा, आप स्वयं को देंगे और बाबा देगा। अगर दिल से आप अपने आप को सर्टिफिकेट देते हैं तो बाबा सर्टिफिकेट दे ही देता है ना। आप दूसरों को भले चला सकते हैं, बाबा को चला भी लेते हैं, लेकिन सही मायने में अपने आप से बात करेंगे, दिल से हम चला नहीं सकते हैं। ये बात क्यों आपको कह रहे हैं, क्योंकि हम सभी इस पर बात करते हैं। संगम युग को कितने वर्ष बचा है अभी, और कितना अटेंशन देना है पुरुषार्थ में। जब भी बात होती है, या तो सार की पुरुषार्थ है, लेकिन सार की पुरुषार्थ में बहुत सारी हम ऐसे बात कर लेते हैं जो सार को बार वापस विस्तार में ले जाता है। हम याद की यात्रा पर हैं, उस यात्रा भी और गहन हो रहा है, और यात्रा 3 तरीके से की जाती है। एक यात्रा हवाई मार्ग से, दूसरी यात्रा जो हम स्थूल मार्ग कहते हैं रोड ट्रांसपोर्ट, और तीसरी यात्रा वाटर ट्रांसपोर्ट। और पुरुषार्थ की अगर अनुभव की बात करेंगे, जो वाटर ट्रांसपोर्ट है बाबा ने वहां से हमको निकाल चुका है, विषय वैतरणी से निकाल करके अभी हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, क्षीर सागर की ओर। जिस दिन 7 डेज कोर्स पूरा हुआ, हमारी पानी वाला यात्रा पूरा हो चुका है, तो वो जो स्थूल मार्ग की रास्ता वो भी समाप्त हो रहा है, यूं कहे कि समाप्त हो चुका है। अब हमारी यात्रा उड़ान की है, फ्लाइट में जाना है। बाबा तो रॉकेट की यात्रा की बात करते हैं, जो रहा 10 वर्ष हैं। अभी हमें किस प्रकार के पुरुषार्थ करना चाहिए, हम उस बात को इस याद की यात्रा के प्रोजेक्ट में लेंगे। अटेंशन रहेगा अभ्यास की ना। मुझे याद आता है कि जब शुरू शुरू में ज्ञान सरोवर में आए, तो जगदीश भाई साहब ने एक ग्रुप बनाया था, साकार मुरली से कुछ पॉइंट्स निकालने के लिए क्वेश्चन दिया गया था, और उसमें ज्ञान सरोवर के और पांडवन के हम भाई लोग थे, तो लगभग 16 सब्जेक्ट था। उसमें एक सब्जेक्ट ज्ञान योग धारणा सेवा से लेकर के 4-4 सब्जेक्ट लिया गया था। हर हफ्ते हम उनसे मिलते थे पांडव भवन में, तो उस समय हम लोग कई सवाल करते थे। और आप सोचिए कि हम, मैं 96 की बात कर रहा हूँ, और 96 में वो सारी बातें संपूर्णता संपन्नता अंतिम समय की पुरुषार्थ की बात किया करते थे। आप सबको मालूम है जो पुराने हैं, 2000 में विनाश होगा ब्रह्मा कुमारीज में एक इन जनरल बातें चलती थी, और विनाश से पहले क्या तैयारी हो उसकी भी पुरुषार्थ कराया जाता था। लेकिन वो बात यहाँ पर इस यात्रा में इंक्लूड करेंगे। रमेश जगदीश भाई ने याद की यात्रा को 3 बात कहा करते थे, याद की यात्रा में लंबाई हो, चौड़ाई हो और गहराई हो। लंबाई चौड़ाई गहराई करने के लिए आपको किसी दूसरी व्यक्ति की मदद नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब ने द्वापर से लेकर कली की अंत तक, जब तक बाबा न मिले, हम सब अपने मन की ही किया। मुझे जो अच्छा लगता है मैंने वही किया। लेकिन जब बाबा आते हैं धरती पर, और हमको बाबा मिल गया, हम बाबा को मिल गए, तो वहां फिर भी मेरा मन का नहीं होना चाहिए। तो आपकी याद की यात्रा उड़ान तब भरेगा जिस दिन आपके मुख से ये शब्द नहीं निकलेगा कि मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मेरी पसंद का नहीं है। याद की यात्रा में कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा हमें ना। हम कई बार बात करते हैं आपस में, फ्लाइट में जाते हैं मोबाइल को स्विच ऑफ किया जाता है, फ्लाइट मोड में किया जाता है, लेकिन हम जब योग भट्टी में बैठते हैं बार 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 बोलने के बाद भी फ्लाइट मोड में होता ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि ऐसे ही चल रहा है? हम याद की यात्रा में कहाँ तक गहराई में हैं? जब कहा जाता है कि मोबाइल स्विच ऑफ करो, माना स्विच ऑफ हो जाना चाहिए। अगर मोबाइल स्विच ऑफ नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं अभी भी धरती पे चल रहा हूँ। तो उसमें भाई साहब कहा करते थे कि ये यात्रा लंबाई चौड़ाई गहराई के लिए खुद को यात्रा करना होगा बाबा के साथ। तो जब आप ये समझेंगे कि मुझे बाबा क्या कहते हैं करने के लिए, जीवन में कोई बात आ जाए पहली पहली किसकी बात याद आती है, वो आपकी याद की यात्रा को क्या करेगा, अव्यभिचारी करेगा। तो मैं 8 पॉइंट नोट किया हूँ, हम आगे बात भी करेंगे लेकिन समय हो रहा है, 3 मिनट में कंक्लूड करेंगे। अनिता दीदी ने जो कहा कि हम 1 वर्ष पुरुषार्थ करें, बहुत अच्छी अच्छी बातें होगी। जैसे मैंने कहा कि इस ग्रुप में हम जो भी पुरुषार्थ करेंगे उन पुरुषार्थ को पूरी तरीके से शामिल करेंगे जो पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने किया था, मम्मा ने किया था, हमारी दादियों ने किया है, उस प्रैक्टिकल पुरुषार्थ को इस प्रोजेक्ट में शामिल करेंगे। और ही पॉइंट निकलेंगे, लेकिन जो मैं मुरली याद कर रहा था, बाबा को कौन सा याद पसंद है, आपसे मुरली में सुना होगा, और जब भी याद की बात आती है बाबा कहते हैं बच्चे जानते हो, बाबा कहते हैं बच्चे समझते हैं, ये 3 बात आप नोट करना, साकार मुरली से बात बार बार कहते हैं। जवाब जब बाबा कहते हैं कि बच्चे जानते हो तो फिर क्या रह गया? तो ये एब्सोल्यूट केवल बाबा ही रहे याद में। तो बाबा को कौन सी याद पसंद है? बाबा कहते हैं मुझे अव्यभिचारी याद पसंद है। याद क्या हो? अव्यभिचारी, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, कोई भी नंबर वन बनना चाहते हैं, बाबा एक ही टिप्स देते हैं, दिल में बाप हो न कि बात हो, इसको कहते हैं अव्यभिचारी याद। और बाबा कौन सी याद पसंद है? याद निराधार हो। जैसे अभी लाइट चली गई, आप अपने आप से पूछ लो, लाइट जाते ही आपके मन में संकल्प क्या आया? कोई भी एक्शन रिएक्शन हो, आपके मन में जो संकल्प तुरंत आता है वही आपकी स्थिति है, और वही आपकी आपको आगे ले जाएगा। अगर संकल्प चला कि लाइट जाते ही आप स्थिर हो गए, बिंदु बन गए, फुल स्टॉप लगा दिया तो पास। लाइट की याद किया, लाइट चली गई, कब आएगी, तो फिर आप फेल। याद निराधार हो, पर याद एक रस हो, याद निरंतर, निरंतर शब्द का अर्थ है याद की धुन लगी रहे, और याद एक ठीक हो, जिसकी याद में बैठ गए तो उसी की याद में बैठ जाओ, याद में एकाग्रता हो, एक ठीक में बुद्धि की स्थिरता, और एकाग्रता में मन और बुद्धि दोनों आ जाते हैं और शरीर भी आ जाता है। पर याद निष्ठा के साथ हो, निष्ठा मतलब इसको बाबा कहते ना वफादारी, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा नौक, हम सुनते हैं ना हमारे यज्ञ इतिहास में, पहले इसको योग नहीं कहते थे, पहले दादियां कहते इसको निष्ठा में बिठा दो, बस एक जगह पर बैठ जाओ, हिलना नहीं है, धीरे धीरे अभ्यास हुआ। और याद जैसे हम शुरू में अभ्यास किया, अंगद समान अचल अडोल हो, तो इस प्रकार की कुछ अभ्यास को हम ऐसे करें, क्योंकि जब यात्रा करते हैं हम चीजों को समेटते हैं, और यात्रा एक जगह से जिस जहाँ से जाना होता है दूसरी मंजिल पर, तो वहाँ जाने के लिए हम देखते हैं कि वहाँ कौन सी कौन चीज़ ज़रूरत है, उसको ही इकट्ठा करते हैं। जो उस जगह जहाँ जा रहे हैं वहाँ ज़रूरत नहीं उसको नहीं लेते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे, हमें डेस्टिनेशन क्या है, घर जाएंगे, वापस सतयुग दुनिया में आएंगे। तो यात्रा जब करते हैं उसमें माइलस्टोन्स होते हैं, हम कहाँ से निकले थे और कहाँ तक पहुँचे हैं और फिर कहाँ तक जाना है। अभी जो जाने की स्पीड है, अब जो है 2017 के बाद दादी गुलजार अव्यक्त होने के बाद बाबा की वो महावाक्य को प्रैक्टिकल करने के लिए बाबा समय दिया। अभी आपकी याद की यात्रा ऐसा हो जैसे आत्मा रॉकेट बन करके अभी यहाँ तो एक सेकंड में वहाँ पहुँच जाए, तो अभी याद की यात्रा में रॉकेट की स्पीड हो, रॉकेट की स्पीड होगी तो पहुँच सकते हैं। तो पूरे प्रोजेक्ट के अंतर्गत याद के संबंधित जो भी बातें बाबा ने कहा है उसको आगे बढ़ाएंगे, हम कल आपस में मिलेंगे, उसको फिर कुछ आपके सामने भी जो इस ग्रुप में सम्मिलित होना चाहेंगे तो आप सबको पूछा जाएगा। और मैं आप जैसे अनीता दीदी हैं, हमारी पूरा जो ट्रेनिंग होती है टीचर्स बहनों की और संस्था की तरफ से, आज सर्टिफाइड टीचर हमारे ग्रुप में हमको मिला है, हम चाहेंगे ये जो पूरा याद की यात्रा की प्रोजेक्ट ऐसा हो, ये पैसिव ना हो कि इस तरफ से जाए और आप लोग करते जाओ। हम चाहेंगे हमें अच्छे से अच्छे एडवाइजर मिले हैं, आपके दिल में कोई भी प्रश्न हो आप अभी से प्रश्न ढूंढना शुरू करो, याद की यात्रा को रॉकेट की स्पीड में ले जाने के लिए हमें क्या क्या करना है, कोई भी प्रश्न आप हमें लिखो और हम उसकी उत्तर दीदी के माध्यम से आपको देंगे, कुछ मुरलियों से देंगे। अब इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कोई ऐसा प्रश्न रहने जाए मेरा योग नहीं लगता, ऐसा हो सकता है, तब होगा जब प्रैक्टिस करेंगे हम। तो हम फिर कल 11:30 से लेकर 1 बजे का जो सेशन होगा, जो पैरेलल डिस्कशन होगा, आपको कल सवेरे रूम अनाउंस करेंगे जो भी प्रोजेक्ट्स हम लेंगे। तो इस ग्रुप में जो पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो उस रूम में आप आएंगे, फिर इसके और विस्तृत चर्चा करेंगे और उसकी प्रॉपर प्लानिंग करके फिर आगे बढ़ेंगे। ओम शांति।